स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 13 नवंबर और दिन शुक्रवार। विरोध के बीच 3 दिनों की ब्रिटेन यात्रा पर लंदन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार की हार के बाद भाजपा में नहीं थम रही है बयानबाजी, लेकिन समर्थन में भी आए कुछ लोग।
ये हमारे नकारात्मक जो ताकतें लगी उसका परिणाम है ये, अब उसी को लेकर के हैतवा मचाने की जरूरत नहीं है।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, समीर आत्मज मिश्र से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनका ब्रिटेन दौरा दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक बड़ा अवसर है। 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर गए मोदी कल ब्रिटेन की संसद को संबोधित कर रहे थे। मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ब्रिटेन की संसद को संबोधित किया है। नरेंद्र मोदी और ब्रितानवी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि दोनों देशों की कंपनियों ने 9 अरब पाउंड यानी करीब 900 अरब रुपये के समझौते करने की घोषणा की है। लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिण इलाके में हुए 2 बम धमाकों में कम से कम 37 लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर है। अधिकारियों का कहना है कि ये दोनों ही आत्मघाती धमाके थे। दोनों धमाके बुर्ज अल बरानजेह जिले में हुए हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना था, मैं खड़ा था तभी मैंने अचानक एक धमाके को महसूस किया और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे ऊपर गिलास के टुकड़े गिर रहे हैं, लेकिन धमाका कैसे हुआ था, किस चीज़ में हुआ था, ये मुझे नहीं पता। उसके कुछ ही देर बाद एक अन्य धमाका हुआ। ये थे एक प्रत्यक्षदर्शी के शब्द। जिस जगह पर धमाका हुआ है वो इलाका शिया बाहुल्य है और यहाँ हिजबुल्ला लड़ाकों की पकड़ काफ़ी मजबूत बताई जाती है। जहाँ धमाके हुए हैं उसके पास फलस्तीनी शरणार्थियों का एक शिविर भी है। म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू ची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी बड़े बहुमत की ओर अग्रसर है। अब तक घोषित परिणामों में उसे 80% सीटों पर सफलता मिली है। हालांकि करीब 1/4 संसदीय सीटें सेना के लिए निर्धारित हैं, जिसका मतलब हुआ कि बड़ी सफलता के बावजूद संसद में सेना की भूमिका प्रभावी रहेगी। सू ची को दुनिया भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तरी इराक में कुर्द सेनाओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि वो सिंजर शहर को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से दोबारा मुक्त करा लेंगी। इस्लामिक स्टेट ने इस शहर को पिछले साल अपने कब्जे में ले लिया था। कुर्द सेनाओं के मुताबिक उन्होंने सिंजर शहर को 3 तरफ से घेर दिया है और इलाके को जिहादियों के पहुँच से काफ़ी दूर कर दिया है। अमरीका समर्थित गठबंधन सेनाएँ यहाँ हवाई हमलों में भी सहायता कर रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चीन पर मानवाधिकार हनन के गंभीर आरोप लगाए हैं। मानवाधिकार संगठन की नई रिपोर्ट के मुताबिक भरोसा दिलाने के बावजूद चीन संदिग्धों से गुनाह कबूल कराने के लिए यातनाएं दे रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का ये दावा वकीलों से मिली जानकारियों पर आधारित है। करीब 40 वकीलों के इंटरव्यू के बाद ये बात सामने आई है कि चीन में अब भी संदिग्धों से पूछताछ के दौरान मारपीट की जाती है और गुनाह कबूल कराने के लिए यातना कुर्सी पर बिठाना और जगा कर रखने जैसे पुराने तरीकों का इस्तेमाल जारी है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से चीन के मानवाधिकारों पर जांच के ठीक हफ्ते भर पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट सामने आई है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में। मैं हूं इकबाल अहमद। आज है नवंबर की 13 तारीख और दिन शुक्रवार। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा से। नरेंद्र मोदी 3 दिनों की ब्रितानी यात्रा पर कल लंदन पहुंचे। उन्होंने ब्रितानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से मुलाकात की, फिर ब्रितानी संसद को संबोधित किया। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। एक तरफ जहां उनका शानदार स्वागत हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई लोग उनके ब्रिटेन आने का विरोध भी कर रहे हैं। यहां तक कि संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान भी उन्हें कुछ मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ा। कल दिन भर की गतिविधियों का लेखा जोखा पेश कर रहे हैं लंदन से बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के दौरे के पहले दिन 3 मुख्य बातों का ऐलान किया। भारत और ब्रिटेन के बीच असैनिक परमाणु समझौता। भारत में ब्रिटेन 3 स्मार्ट सिटी बनाएगा और दोनों देशों के बीच 9 अरब पाउंड के व्यापार पर समझौता। पहला दिन केवल ऐलानों का था, इन समझौतों की तफसील नहीं बताई गई। इससे पहले कल सुबह जब वो लंदन पहुंचे तो उनके होटल के बाहर भारतीय मूल के हजारों लोगों ने उनका पुरजोश स्वागत किया, लेकिन दूसरी तरफ उनके खिलाफ विरोधी नारे भी लगाए गए। ब्रिटेन के संसद के बाहर सैकड़ों लोगों ने श्री मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारे लगाए। इन लोगों में भारतीय समुदाय के भी कई लोग शामिल थे, जिनका आरोप था कि मोदी सरकार भारत में अल्पसंख्यकों के साथ ठीक बर्ताव नहीं कर रही है। प्रदर्शनकारियों में नेपाली लोग भी मौजूद थे, जिनका आरोप था कि भारत सरकार नेपाल में राजनीतिक बदलाव के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन समर्थन और विरोध में लगे नारों के दौरान श्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, संसद को संबोधित किया और ब्रिटेन के बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा,
वी मस्ट सेट हायर एम्बिशंस, वी आर टू डेमोक्रेसीज, टू स्ट्रांग इकोनॉमीज।
उन्होंने कहा कि इस समय जरूरत इस बात की है कि दोनों देश दुनिया में वैश्विक भागीदारी की एक मिसाल बने। श्री मोदी ने कहा कि भारत ब्रिटेन को यूरोपीय संघ का प्रवेश द्वार समझता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा,
I would simply add that we have had preliminary discussions today about the terrorist threat that we both face. We're going to have intensive discussions tomorrow morning on exactly.
मैं बस इतना कहूंगा कि दोनों देश आतंकवाद से खतरे का सामना जो कर रहे हैं उस पर आज प्रारंभिक विचार विमर्श किया गया है। कल सुबह इस पर गहराई से बातचीत की जाएगी। भारत ने मुंबई की सड़कों पर आतंकी हमले देखे हैं और हमने लंदन की सड़कों पर, हमें आतंकवाद से लड़ना पड़ेगा। ये थे डेविड कैमरन के शब्द। श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के लिए आशा और अवसर का एक नया चमकता बिंदु है। उन्होंने कहा कि इसका कारण सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि कानून, नीति, संस्थाओं और कार्यशैली में सुधार के लिए उठाए गए ठोस कदम हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का नारा सबका साथ सबका विकास पूरे राष्ट्र का एक सपना है, जिसमें हर नागरिक के लिए भागीदारी शामिल है। श्री मोदी आज बकिंघम पैलेस में ब्रिटेन की महारानी के साथ लंच करेंगे और इसके बाद भारतीय मूल के लोग वेम्बली स्टेडियम में उनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। कहा जा रहा है कि समारोह में 60,000 लोग हिस्सा लेंगे। दिन के आखिर में वो भारतीय मूल के कुछ अहम लोगों से मुलाकात करेंगे। जुबैर अहमद, BBC लंदन।
यूरोप के कई देशों में पुलिस ने एक ऐसे नेटवर्क पर छापे मारे हैं जो लड़ाकों को इराक और सीरिया भेजा करता था। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र।
छापे में इराक और कुर्द के 16 और कोसोवो के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। ये छापे इटली, ब्रिटेन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और जर्मनी में पड़े। पुलिस का कहना है कि ये गुट अपने नेता को रिहा करवाने के लिए हमले करने की योजना बना रहा था। इनके नेता का नाम नजमुद्दीन अहमद फराज है। उन्हें मुल्ला क्रेकर के नाम से भी बुलाया जाता है। फिलहाल वो नॉर्वे में कैद हैं। इटली की पुलिस के विशेष ऑपरेशन ग्रुप के प्रमुख गिसेप गवर्नेल ने इन गिरफ्तारियों को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में अहम उपलब्धि माना है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण अभियान है और ये महज अपने साथियों को धन्यवाद देने का ही सवाल नहीं है। मुझे लगता है कि यूरोप में पिछले 20 साल के दौरान किया गया ये सबसे बड़ा पुलिस अभियान है। गिसेप गवर्नेल के शब्द। इटली की इंसा समाचार एजेंसी के मुताबिक संदिग्ध अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथ संगठनों से जुड़े हुए हैं। इराकी कुर्द मूल के मुल्ला क्रेकर इस्लामी कट्टरपंथी संगठन अंसार अल इस्लाम के संस्थापक हैं और 1991 में नॉर्वे में शरणार्थी बनकर आए थे। 2012 में क्रेकर को अधिकारियों को जान से मारने की धमकी देने के मामले में सजा दी गई थी। इस साल फरवरी में फ्रेंच अखबार शार्ली एब्डो के कर्मचारियों पर चरमपंथ हमलों की टीवी पर प्रशंसा करने के मामले में क्रेकर को गिरफ्तार किया गया था।
ये थे समीर आत्मज मिश्र।
दुनिया की बड़ी खबरें BBC के साथ सोमवार से शुक्रवार देखिए टीवी पर BBC दुनिया। ईटीवी नेटवर्क के हिंदी और उर्दू के सभी चैनलों पर।
नमस्कार, स्वागत है आप सबका, यह है बीबीसी दुनिया, मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर।
यहाँ आकर वो लोगों को गले लगाते हैं और कहते हैं हम अब आजाद हैं।
उससे बात करने में बहुत मजा आता है।
तो देखना मत भूलिए बीबीसी दुनिया शाम 9:20 पर ईटीवी के साथ साथ bbchindi.com और बीबीसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर भी। बीबीसी दुनिया।
और अब बात बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी में उभरे बगावत के सुर अब भी नहीं थम रहे हैं। बीजेपी सांसद करिया मुंडा और बिहार के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर ने भी पार्टी की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने सीपी ठाकुर से बात की और पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि चुनाव में वरिष्ठ नेताओं को अहमियत मिलती तो नतीजे कुछ और होते।
देखिए, हम तो लड़े थे इसके पहले, लास्ट इलेक्शन हमारे हुआ था, हम ही अध्यक्ष थे, तो वो उस वक्त जो है तो हम 102 सीट हमको मिला था, 91 प्लस 1 जीत गए, तो बहुत अच्छा हुआ था। अब क्यों हुआ नहीं हुआ, हमारे रहते होता नहीं होता, लेकिन हम तो एक महीना सब लोगों को कहें कि लिखो इसे, जितने आदमी से मिलते हैं एकदम इरिस्पेक्टिव ऑफ माई प्रेजेंट, इन्हें कि हम हैं तो हमारे फेवर में लिखो, चाहे कोई भी, तो आपको निष्पक्ष जो लगे से लिखते, ये सब करके करेंगे तब बोलेंगे लोग।
आडवाणी जी हैं, मुरली मनोहर जोशी है, उन्होंने भी एक समीक्षा की बात की है इसे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अच्छी तरीके से नहीं देखा जा रहा, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, पार्टी में होना चाहिए बात, ये हम इसके भी हम भी पक्षधर हैं, ये हम अकेले नहीं बोलेंगे, पार्टी में पहले पार्टी में हम लोग बराबर डिस्कस करते हैं, कोई इशू पार्टी में।
तो ये जो सीनियर नेता है इन्होंने ये बयान साझा क्यों जारी किया?
तो बहुत सीनियर है इसलिए हम उसमें नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये पार्टी में ही पहले होना चाहिए, ठीक यही है कि पार्टी के फोरम पर हो और डिस्कस करे, कहे, हम लोग ही उसे पास लेंगे, सबको ही लेंगे।
सीपी ठाकुर साहब, मैंने आपका भी एक बयान देखा एक अखबार में, उसमें आपने ये कहा कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है।
उपेक्षा वगैरह नहीं हुई, अब नए सिरे से कह रहे ना कि एक महीना हम इसको ही करेंगे, कि क्या कारण है जो ये तरह से इसको डिवाइकल कर दिया जाए, तो कोई बुरी बात नहीं है, इसीलिए कहें कि एक महीना तक प्रेस में नहीं जाएंगे, क्या कारण है नहीं कारण है, लेकिन हम चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल के डिस्कस करें, अलग अलग बयान नहीं दें, नहीं देंगे सर, इंडिविजुअल अलग है, पार्टी में अगर आप हैं तो पार्टी का डिसिप्लिन, पार्टी का नॉर्म, इसको मानना पड़ेगा।
ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर। तो बिहार चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद जीतन राम मांझी जैसे एनडीए के सहयोगियों ने भी पार्टी की रणनीति पर सवाल उठाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ कह रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बीजेपी के समर्थन में खड़ी है। चुनाव में इस पार्टी का प्रदर्शन भी कोई खास अच्छा नहीं रहा था, लेकिन पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के बचाव में जुटे हैं। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर अरुण कुमार से बात की और पूछा कि चुनाव से पहले दिखने वाली एनडीए की एकजुटता अचानक दरकती हुई क्यों दिख रही है?
हार होती है तो बहुत लोगों के मन में निराशा का भाव पैदा होता है और उस निराशा से निकलने के लिए दूसरे पर चीजें ट्रांसफर करते हैं। आज भी मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी बिहार में सबसे लोकप्रिय हैं और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, नेगेटिव चीजें ज्यादा चली गई, तात्कालिक चीजें लोगों को ऐसे गाँव खेत कल्याण में पहुँचा दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी तो आई हुई है लेकिन आरक्षण को और मजबूती देगी, ये कमजोर करेगी, लेकिन इस बात को लोगों ने कहा कि बिहार में आएगी, जैसे बिहार से ही आरक्षण का उत्पत्ति होना है और अंत होना है।
लेकिन जिस तरह से परिणाम आने के बाद नरेंद्र मोदी पर ही सबसे ज्यादा निशाना साधा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में भी उनको काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं?
जो विरोध में बोल रहे हैं एलाइज, जिस समय बोलना चाहिए था उस समय तो बोले नहीं, यदि कोई त्रुटि थी तो उसको बैठ करके ये करना चाहिए था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर का जो विरोध है, वह विरोध पहले से भी वहां दबा हुआ था, कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का प्रत्यारोपण होना या प्रकटीकरण होना, एकाएक भारतीय क्षितिज पर ग्लोबली एक्सेप्टेबिलिटी होना कुछ लोगों को पच नहीं रहा है, जिन्होंने अपने तरीके से की व्याख्या यह उचित समय था उनके लिए कि कमजोर वक्त था। तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे अनुशासन वाली पार्टी कहे जाने वाली है, पार्टी विथ डिफरेंस, उसको इन चीजों को पार्टी के अंदर रिजॉल्व करना चाहिए, बैठ करके उसका रास्ता निकालना चाहिए। इस पर जिस तरीके की चीजें चल रही हैं नकारात्मक, वह निश्चित तौर से एनडीए के लिए अच्छा नहीं है।
डॉक्टर अरुण कुमार, इस चुनाव में आपकी पार्टी को भी एक बड़ा झटका लगा है, उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं आए, तो आगे अब आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि महागठबंधन एक राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प बनाने की बात भी कर रहा है।
निश्चित तौर से हम ये महसूस करते हैं कि एनडीए का जो फ्लोर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो ठीक नहीं रहा, हमारे कार्यकर्ताओं का एनडीए के रूप में इंटरेक्शन नहीं हुआ, ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, हम एक दूसरे को पछाड़ने लगे कि एक सीट जाएगा तो क्या। ये हमारे नकारात्मक जो ताकतें लगी उसका परिणाम है ये। अब उसी को लेकर के हैतवा मचाने की जरूरत नहीं है, राजनीति में सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति नहीं होती है, विपक्ष के रूप में भी पैनी दृष्टि रख करके खेत खलिहान गांव वंचित समाज के विकास के लिए हम संघर्ष कर सकते हैं और हम करेंगे।
ये थे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सांसद डॉक्टर अरुण कुमार। और अब वक्त हो चला अखबारों की समीक्षा का, और हमारे साथी समीर आत्मज मिश्र तमाम अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी बताएं समीर।
इकबाल साहब, तमाम अखबारों के साथ मैं हूं और मेरे पास जो भी अखबार हैं उनमें जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी का जो ब्रिटेन में असहिष्णुता वाला, हाँ ब्रिटेन दौरा, और उसमें असहिष्णुता के खिलाफ जो कहा उन्होंने कि भारत असहिष्णुता के खिलाफ है, वो बयान छाया हुआ है और उसकी चर्चा हम करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खबर जो लगभग कई अखबारों ने उसको अपनी पहली खबर बनाया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, दैनिक जागरण ने और भी कई अखबारों ने, वो है कि और हिंदुस्तान ने कि दिवाली पर दिल्ली जहरीली हो गई, खूब चले पटाखे, लोगों को जागरूक करने की मुहिम काम नहीं आई, कई इलाकों में देर रात तक होती रही आतिशबाजी। तो पूरी दिल्ली के ऊपर जो है धुंध छाई रही दिवाली के दिन और पटाखों की वजह से जो धुआं निकला, इसकी चर्चा सभी अखबारों ने प्रमुखता से की है।
हालांकि कोशिश बहुत हो रही थी,
जी हाँ,
कैंपेन चलाया जा रहा था लोग टेलीविजन पर,
उसी पर मैं आ रहा हूँ। दैनिक जागरण ने भी इसी को लीड बनाया है, हवा में खूब घुला जहर मगर पिछले साल से कम। अखबार लिखता है कि सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं के अभियान का दिखा असर, तेज हवा चलने के कारण भी प्रदूषण से कुछ हद तक मिली राहत। उसके अलावा जो दूसरी खबर है जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी का बयान, द हिंदू लिखता है इंडिया नॉट इंटॉलरेंट मोदी, यही बयान करीब करीब सभी जगहों पर, असहिष्णुता पर बोले मोदी, हमारे लिए हर घटना गंभीर। लेकिन जनसत्ता की हेडिंग थोड़ी अलग है, अखबार लिखता है कि स्वागत के साथ असहिष्णुता और गुजरात से सामना, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी दावेदारी का ब्रिटेन ने किया समर्थन, नेहरू और मनमोहन का जिक्र। जनसत्ता लिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश संसद के अपने ऐतिहासिक संबोधन में भारत और ब्रिटेन से जुड़े इतिहास के बारे में बात करते हुए अपने पूर्ववर्तियों जवाहरलाल नेहरू और मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया। इसके अलावा अगर बात करें तो एक जो जनसत्ता की लीड खबर है, टीपू सुल्तान पर खींची तलवार, दूसरे अखबारों में भी इस खबर की चर्चा प्रमुखता से है। अखबार लिखता है कि गिरीश कर्नाड को जो धमकी दी गई है कुछ संगठनों की ओर से, और गिरीश कर्नाड का जो ट्वीट है उसकी चर्चा है, और उस पर गिरीश कर्नाड ने सफाई दी है कि मैं ट्वीट से चिंतित नहीं हूं, अगर लोग ट्वीट करते हैं तो ये लगभग तय है कि उनके पास साहस नहीं है, कलबुर्गी की हत्या भाड़े के अपराधियों ने की जो ट्वीट नहीं करते हैं। और एक आडवाणी जोशी की दो टूक, हार की जिम्मेदारी ने शाह, बुजुर्ग नेताओं को मनाने पहुंचे जेटली, लौटे खाली हाथ, बिहार चुनाव के बाद जो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है खींचतान, उसकी चर्चा भी अखबारों में प्रमुखता से है।
जी बहुत शुक्रिया समीर। और अब चलते हैं कर्नाटका। जाने माने नाटककार और निर्देशक गिरीश कर्नाड ने बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम बदलने से जुड़े अपने विवादास्पद बयान पर सशर्त माफ़ी मांगने की बात कही है। कर्नाट के बयान पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों ने विरोध जताया था। एक रिपोर्ट के साथ बेंगलोर से इमरान कुरैशी।
गिरीश कर्नाट अब भी अपने बात पर अटल हैं। बुधवार को उन्होंने कहा था कि बेंगलुरु का इंटरनेशनल एयरपोर्ट टीपू सुल्तान के नाम होना चाहिए था। उनका मानना है कि एयरपोर्ट को केम्पेगौड़ा का नाम देना ठीक नहीं था, लेकिन उनके खिलाफ जब बीजेपी और अन्य संस्थाओं ने विरोध किया तो कर्नाट ने सशर्ता माफी पेश की। कर्नाट ने कहा, मैंने माफी सिर्फ उन लोगों से मांगी है जिनको मेरी बात से दुख पहुंचा हो। मैंने अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगी है। मैंने 3 साल पहले जब एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ था उस समय कहा था कि इस एयरपोर्ट का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि वह देवनहली में पैदा हुए थे। मुझे ये अच्छी तरह मालूम है कि अभी एयरपोर्ट का नाम बदल नहीं सकते। ये बात बेकार में ही उठी है। ये थे गिरीश कर्नाट के शब्द। गिरीश कर्नाट का मानना है कि टीपू सुल्तान ने कर्नाटका के लिए वही किया है जो शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र के लिए किया था। उनका मानना है कि टीपू ने कर्नाटका को उसी तरह एकीकृत किया था जैसे शिवाजी ने महाराष्ट्र को। कर्नाट ये भी मानते हैं कि टीपू सुल्तान अपने दुश्मनों से बुरी तरह से निपटते थे, जैसे कि उन्होंने केरला के मोपला या मुस्लिम की बलि की थी। लेकिन कर्नाट के माफ़ी मांग लेने के बाद भी उनका विरोध कम होता नहीं दिख रहा है। गिरीश गौड़ा एक NGO चलाते हैं और उन्होंने ही पुलिस को कर्नाट के खिलाफ शिकायत की है। गिरीश कर्नाट ने अपने उत्तेजक बयान से बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा का अपमान किया है। हमने पुलिस में शिकायत दर्ज की है, लेकिन अभी तक कोई FIR रजिस्टर नहीं हुई है। उन्होंने वकीलिका समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अगर शनिवार तक FIR नहीं रजिस्टर हुई तो हम पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन करेंगे। ये थे गिरीश गौड़ा के शब्द। गिरीश कर्नाट ने खुद को मिले धमकी भरे ट्वीट्स की कोई परवाह नहीं की है, लेकिन यह काफी साफ दिख रहा है कि ये विवाद जल्दी थमने वाला नहीं है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
तो टीपू सुल्तान पर विवाद जारी है और अब चलते हैं एक दफ़ा फिर इंग्लैंड। पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए लड़ने वाले मुस्लिम सैनिकों की याद में सरे में एक मेमोरियल गार्डन तैयार किया गया है। ये गार्डन उसी जगह बनाया गया है जहां युद्ध में हिंसा लेने वाले 7 मुस्लिम सैनिकों को दफन किया गया था। यह उन सैनिकों के योगदान के लिए श्रद्धांजलि है। एशियन नेटवर्क की शबनम महमूद की रिपोर्ट पेश कर रही हैं हमारी साथी हरिता कांडपाल।
ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें याद दिलाती हैं पहले विश्व युद्ध की, जिसमें ब्रिटिश सेना के साथ करीब 13 लाख भारतीयों ने भी हिस्सा लिया था। युद्ध के दौरान घायल हुए सैनिकों में कईयों की इलाज के दौरान मौत हो गई। हिंदू और सिख सैनिकों का रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जबकि मुस्लिम सैनिकों को इलाज की परंपरा के मुताबिक सरे के वोकिंग के कब्रिस्तान में दफन किया गया। शाहजहां मस्जिद के इमाम हाशमी कहते हैं,
शाहजहां मस्जिद 1889 में बनाई गई। सोचा गया कि कब्रिस्तान मस्जिद के पास होना चाहिए। उन्हें इस्लाम की परंपरा के मुताबिक दफन किया गया, सभी रस्में निभाई गईं।
इमाम हाशमी के शब्द। 60 के दशक के आखिर में मुस्लिमों की कब्रों को यहां से हटा दिया गया और पास के कब्रिस्तान के मुस्लिम सेक्शन में उनके लिए जगह बनाई गई। तब से ये कब्रें वहीं हैं और जहां से कब्रें हटाई गईं वो मैदान अब तक उजाड़ था। वोकिंग काउंसिल के जफर इकबाल कहते हैं,
वक्त के साथ ये जगह इस कदर बदहाल हो गई थी कि यहाँ दाखिल होना भी मुश्किल था।
जफर इकबाल ने इस जगह को मेमोरियल गार्डन में तब्दील करने का फैसला किया। यहाँ 27 पेड़ लगाए गए हैं जो पहले और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ते हुए मारे गए मुस्लिम सैनिकों की याद में खड़े हैं।
हिस्टोरिकल साइट एंड इट्स गॉट अ कंटेंपरेरी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द सोसाइटी इन व्हिच वी लिव।
ये ऐतिहासिक स्थल है और जिस समाज में हम रहते हैं उसके लिए आज भी यहाँ का मूल्य है। ये लोगों को अतीत, वर्तमान और भविष्य से जोड़ता है। इसी बात ने मुझे इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए प्रेरित किया।
जफर इकबाल के शब्द। स्कूली बच्चों समेत स्थानीय लोगों ने इस उजाड़ जगह को इस्लामी परंपरा के मेमोरियल गार्डन में तब्दील करने में मदद की है। 16 बरस की जैस्मिन राजा भी ऐसे ही लोगों में शामिल है। जैस्मिन बताती हैं,
Muslims should recognize the fact that our ancestors did help in the war and they put a lot of
मुस्लिम समुदाय को इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने युद्ध में सहयोग किया था और उन्होंने ब्रिटिश सेना के लिए काफी योगदान दिया था। जैस्मिन राजा के शब्द। गार्डन तैयार करने वालों को उम्मीद है कि किसी वक्त यहां दफन हुए सैनिकों के नाम पत्थर पर दर्ज करने से उनके योगदान का स्मरण बना रहेगा। आर्म फोर्सेस मुस्लिम एसोसिएशन के कैप्टन नवीद मोहम्मद कहते हैं,
Muslim soldiers have been part of the British Armed Forces for over 100 years and recognizing that is immensely important.
Muslim सैनिक करीब 100 साल तक British Armed Force का हिस्सा थे। उन्हें पहचान मिलना बेहद अहम है। इस स्मारक से समुदाय को शायद सीखने का ज्यादा मौका मिलेगा। ये बात अहम है।
नवीद मोहम्मद के शब्द। सैनिकों की याद में तैयार किए गए गार्डन में पहुंचने वाले न सिर्फ उनके योगदान को याद करेंगे बल्कि इस स्मारक का रूप देने वालों की मेहनत भी उन्हें नजर आएगी।
ये थी हरिता कांडपाल। विश्व कप फुटबॉल क्वालिफायर में आखिरकार भारत ने कल पहली जीत हासिल कर ली। भारत ने कल गुवाम को 1-0 से हरा दिया। विजयी गोल रॉबिन सिंह ने किया। इस जीत के बाद हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने फुटबॉल समीक्षक नोवी कपाड़िया से बात की और भारत के प्रदर्शन के बारे में पूछा।
देखो, पूरा दूसरा हाफ भारत 10 आदमी से खेले, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि शहनाज सिंह ने जो टैकल किया वो बिल्कुल एक खतरनाक टैकल था और मिडल ऑफ द फील्ड में था। ये बिना बात को भारत को खतरा में डाल दिया और पूरा दूसरा हाफ गुआम को फायदा था एक आदमी का और वो हा भी रहे। गुरप्रीत सांधू ने काफी अच्छे बचाव किए लेकिन एक दो दफा गलतियां हुई है और अर्नब मोंडल ने एक दफा सेल्फ गोल भी होने लगे थे लेकिन सांधू ने बहुत अच्छा बचाया। तो तारीफ है कि भारत कम से कम 5 मैच हारने के बाद 1 जीत तो इन्होंने प्राप्त किया है विश्व कप में। और वो जो 1993 में जो था कि 6 मैच लगातार हारे थे विश्व कप क्वालिफायर में, वो रिकॉर्ड से तो कुछ बेटर हो गया कि 5 मैच के बाद कम से कम 1 मैच जीते हैं। अब 2 मैच बचे हैं भारत के लिए और 1 मैच है ईरान के विरुद्ध, वो भी तेहरान में। वो तो जीत लगभग असंभव है क्योंकि एशिया की कोई भी देश कठिन है उनको ईरान के साथ जीतना। अब तुर्कमेनिस्तान के साथ एक भारत मेजबान करेगा उस मैच को, तो उम्मीद करते हैं कि भारत 6 पॉइंट ले सकते हैं। ये जीत से आत्मविश्वास युवा खिलाड़ियों का बहुत बढ़ेगा और अब तुर्कमेनिस्तान से जो केवल 2-1 से हम हारे थे जब अवे मैच खेले थे, वो मैच जीते हैं तो कुछ इज्जत ये विश्व कप क्वालिफायर समाप्त होंगे भारत के लिए।
गुआम की टीम ने जिस तरह के हमले बनाए, एक तो मैदान गीला होने की वजह से थोड़ा धीमा था, तो आपको लगता है कि उनके खिलाड़ियों को दिक्कत आई? और दूसरा ये कि भारत ने अच्छा डिफेंस दिखाया।
भारत ने बहुत अच्छा डिफेंस दिखाया। मेरे लिए तो सबसे शानदार खेला है गुरप्रीत सिंह सांधू। एक गोलकीपर अच्छा खेलता है तो पूरी टीम को विश्वास दिलाता है और वो गुरप्रीत सिंह सांधू ने दिखाया। लेकिन गुआम ने भी काफी दबाव दिखाया। मेरे ख्याल से स्टीवन कॉन्स्टेंटाइन ने खिलाड़ियों को समझा दिया है कि विश्व कप क्वालिफिकेशन में आगे बढ़ना तो असंभव था, एक नया लक्ष्य लेके चलो। वो रास्ता था कि एशियन कप क्वालिफिकेशन के लिए भारत को कम से कम 6 पॉइंट चाहिए। 3 पॉइंट घर पे लिए, जैसे भी था एक दिलचस्प मैच था, वो हम कह सकते हैं मुकाबला अच्छा था। शॉट दोनों पर हम गोल पे गए हैं और अब उम्मीद करें कि तुर्कमेनिस्तान से भी यही आत्मविश्वास लेके तुर्कमेनिस्तान से भी जीत से। फिर मेरे ख्याल से स्टीवन कॉन्स्टेंटाइन के ये सबसे बड़ा तोहफा मिला है कि वो जो सारी बात हो रही थी कि वो उनको आगे रखना चाहिए या नहीं, ये सब समाप्त हो जाए।
और अब प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनका ब्रिटेन दौरा दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक बड़ा अवसर है। नरेंद्र मोदी कल ब्रिटेन की संसद को संबोधित कर रहे थे। लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिण इलाके में हुए 2 बम धमाकों में कम से कम 37 लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर है। अधिकारियों का कहना है कि ये दोनों ही आत्मघाती धमाके थे। म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू ची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी बड़े बहुमत की ओर अग्रसर है। उत्तरी इराक में कुर्द सेनाओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि वो सिंजर शहर को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से दोबारा मुक्त करा लेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चीन पर मानवाधिकार हनन के गंभीर आरोप लगाए हैं। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। माफ करिएगा, आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली अरिजीत सारथी ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक 1 घंटे बाद 8 बजे कार्यक्रम विश्व भारती में। और अब इकबाल अहमद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।